Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanand Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayana, Narayana, Narayana. यस्यांकेच विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर्गले च गरलम यस्यो रसिव्यालराट सोयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वनिवा शिवा शशिकरा श्री शंकर पातु माम आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषय उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यद कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभोस्तवाराधनम् शंभोस्तवाराधनम् परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, कल आपने सुना था कैवल्योपनिषद में कि सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है और पुरातनोहम पुराण पुरुष भी है, अत्यंत पुरातन प्राचीन है और कैसा है शिव स्वरूप है। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुरमुनि नर प्रसन्नता ऊपर, उसका कभी अशुभ होता ही नहीं है, अमंगल होता ही नहीं है, वो शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप का मतलब होता है सदा प्रसन्न, सदा सुख स्वरूप, सदा शिव स्वरूप। पांच चीजें हैं मांगलिक मानी गई जिनका स्मरण करने मात्र से सब अशुभ कट जाते हैं, शिव स्वरूप हो जाता है। पांच चीजें, पहली तो मंगल भवन मंगलहारी, अभी आप सुनी रहे थे भगवान श्री राम का है, वो मांगलिक है। भगवान का नाम प्रातः सायं जब कभी मौका मिले तो संपूर्ण मंगलों का आश्रय है और अमंगलों का नाशक है। मंगल भवन मंगलहारी, इसी को शिव कहते हैं, शिव सदा शुरू शुरू। तो और दूसरा नाम है सीता जी का, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे, तो ये भी मंगल रूप है। और तीसरा नाम हनुमान जी का है, मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल सकल अमंगल मूल निकंदन सकल पवन तनय संतन हितकारी पवन हृदय विराजत अवध विहारी हृदय। भगवान जिनके हृदय में विराजमान हैं वो अवध विहारी हनुमान जी हैं। और चौथे और है, चौथे क्या है, भोले मुद मंगल मय संत समाजो मुद मंगल जो जड़ जंगम तीरथ राजो जो जड़। ये संत भगवान है, ये भी मांगलिक है, इनका मंगल दर्शन, इनका स्मरण सब मांगलिक है। और एक पांचवा और है, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मांगलिक है। मंगल करण कलिमल हरण, कलिमल को हरण करने वाली है। तो पांच चीजें मांगलिक होती हैं, उन्हीं के लिए यहां शिव स्वरूप आया। अर्थात तो, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर मुनि नर प्रसन्नता ऊपर, उसका तो मौजा ही है। अब आगे आया अपाणी पादो पादो हम अचिंत शक्ति ही। अरे आप कहेंगे हाथ पाए नहीं है। अपाणी पादो हम अचिंत शक्ति ही। और एक और आश्चर्य, पश्यत्य चक्षुः श्रोत्य कर्णः, बिना कान के सुन ले, बिना आंख के देख ले। अहम विजानामि विविक्त रूप, और हमारे कैसा है, विविक्त रूप है, नाना प्रकार का रूप है, हाथी में, घोड़ा में, चींटी में, चूहा में। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, क्या बोले, न वेत्तासि, कोई जानने वाला नहीं है हमको, कोई जान जाए सुने काहे, चित सदा हम, मैं सदा चित स्वरूप हूं, मेरा मम मेरा चित स्वरूप है। तो अब जरा इस पर विचार करते हैं। अपाणी पादो, और एक श्रुति और है, अपाणी पादो जवनो गृहीत्वा पश्यत्य चक्षुषः श्रोत्य कर्णः न वेत्तासि, वेद्यम न वेत्तासि, कोई वेद परमात्मा को जान नहीं पाता है कैसा है वो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो अनादि अनंत है, और जो अनादि अनंत होता है वो अपरमेय और व्यापक भी होता है। तो अपरमेय व्यापक अनादि अनंत हुआ, तो उसे कर्मेंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों की जरूरतें नहीं है। पश्यत्य चक्षुः श्रोत्य कर्णः, बिनई कान के सुने और बिनई आंख के देख ले, ऐसा आत्म तत्व है। बड़े आश्चर्य की बात है। और जो अवतार भी लेते हैं भगवान, तो उनमें ये विशेषता है। हमारी तो इंद्रियां सीमित हैं, आंख देख सकती है सुन नहीं सकती, और कान सुन सकता है देख नहीं सकता। लेकिन भगवान जो अवतार लेके आते हैं, उनकी सब इंद्रियां सब काम करती हैं। वो आंख सुन सकती है और कान देख सकता है, ऐसे है। पश्यत्य चक्षु, तो इसका मतलब ये अपरमेय अनंत अनादि परमात्मा या आत्मा जो है, उसमें कर्मेंद्रियां नहीं है, न ज्ञानेंद्रियां हैं। अरे तो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नहीं तो काम कैसे होता है? बोले यही तो विशेषता है, यही विशेषता है परमात्मा की। ओ पश्यत्य चक्षुः श्रोत्य कर्णः, केन उपनिषद में आया, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुः चक्षूंसि पश्यति तदेदं ब्रह्म कथितं विद्धि नेदं तदिद उपासते यश्रणोति न। देखो ये जो आंख देखती नहीं है और आंख ही जिसकी बदौलत देख रही, यत् श्रणोति यत् श्रोत्रेण न श्रणोति एन श्रोत्रमिदं जगत नेदं तदिदमुपासते। वो ऐसा ऐसा ही है, ऐसा कहके नहीं उपासन किया जा सकता। यत् प्राणेन न प्राणिति एन प्राणमिदं जगत, जो चक्षुषा चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम प्राणस्य प्राणा, प्राण का प्राण है, कान का कान है, आंख का आंख है, नेदम तदिदमुपासते, इसको ऐसा ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिसने जैसा अनुभव किया है, जिसने जैसा देखा है, वो ही आ सकता है। आदि अंत जेहि जासु को जासु न पावा, आदि अंत को मति अनरूप मुनिन जेहि गावा, मति बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, बिन आनन रहित सकल रस भोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाय नहीं वरनी, अस प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबके अंतर्यामी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि आदि अंत को जा सुन पावा, जिसका किसी ने आदि अंत आज तक पा ही नहीं पाया, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल, महान से महान है, तब लोग वर्णन कैसे करते हैं? बोले मति अनुरूप। एक बार मच्छर जी में और गरुण जी में कंपटीशन हो गया, बोले हम ज्यादा तेज दौड़ते, मच्छर ने कहा हम ज्यादा तेज दौड़ते, कहा अच्छा पता लगाओ भगवान का, भगवान का पता लगाया जाए। तो मच्छर जी भी अपने उड़े और गरुण जी भी उड़े, मच्छर जी तो चारों तरफ परिक्रमा करके अपने बैठ गए, बोले ठीक समझ ले अनंत है भगवान, पता नहीं लग सकता। और गरुण जी उड़ते 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 बड़े परेशान हुए बेचारे, बहुत दिन में लौट के आए, मच्छर को वहां देखा, अरे तू पता लगाया? बोले हाँ, क्या लगाया? तो हमारा उत्तर सुन के कह दोगे, तुम बताओ अपना। कहा कि भगवान अनंत है। बोले अरे यही पता हमने लगाया, तो बेकार है इतना दिन उड़े और परेशान हुए। तो आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुरूप अपने बुद्धि के अनुसार, जिसकी जैसी बुद्धि है उसने उसका वर्णन कर दिया। बिनु पग चलई सुनई, बिना बिना पग के चलता है, क्योंकि सबके पग उसी के तो पग हैं। हाँ, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना कान के सुने बिना आंख के देखे, इसका अर्थ यह है कि उसके कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां के द्वारा काम हो सो बात नहीं होती, उनके द्वारा प्रकाशित ही है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, लो आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह है नहीं और संपूर्ण रस भोग कर रहा। अस सब भांति अलौकिक करनी, उसकी अलौकिक करनी। एक दिन गोपियों ने कहा भगवान से कि कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, आज किसी ब्राह्मण को हम भोजन कराना चाहती। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जमुना के पार हो जाओ, उधर दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण महात्मा हैं, उनको भोजन कराया। अब जमुना पार कैसे होंगी, भादों की जमुना अथाह चली जा रही है। बोले ये कह देना कि अगर श्री कृष्ण ने स्त्री का स्पर्श न किया हो तो पांच हो जाओ। तो सब हंसने लगी, अरे हमारे साथ रास लीला की, हमारे साथ रात दिन रहना और ये हम कैसे झूठ बोल दें? बोले तुम बोल देना। गोपियों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कह दिया तो सचमुच जमुना पांच हो गई। बोले नहीं कि जमुना भी सब झूठी है, तो उस पार हो गए। दुर्वासा ऋषि बैठे थे, सो गोपियों ने सोचा कि उनका खा लेंगे हमारा रह जाएगा, मगर उन्होंने उनका सबके रख दो यहीं सामने, सब समेट गए, जितना गोपियां लाई थी भोजन सब पा लिया। अब बोले महाराज श्री कृष्ण जी ने तो उधर से पार कर दिया, अब इधर बोले इधर से कह देना दुर्वासा ने अगर कुछ भी न खाया हो तो पांच हो जाओ। तो गोपियां ने कही गजब हो गया, ये इतना सब समेट गए जितना हम लाई थी और हम ये कैसे झूठ बोले। बोले बोल देना, तो बोल दिया, जमुना जी पांच हो गई। इधर आई तो श्री कृष्ण के पास पर पहुंच गई, बोले ये बताओ तुम तो खैर झूठा जन्म के आओ ये, लेकिन दुर्वासा ऋषि इतने बड़े महात्मा हुए झूठ बोल गए और जमुना जी ने बात मान ली। तो श्री कृष्ण समझाया कि देवियों सच्ची बात तो यही है, ना हम स्पर्श करते हैं कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से, और न कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके दुर्वासा जी भोजन करते हैं। बिन बानी वक्ता बड़ जोगी आनंद रहित सकल, असल में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तो उन्हीं से प्रकाशित है ना, प्रकाश है ना। दूसरी बात एक ये कि ये तो हम आपको लगता है स्पर्श सुख लगता है जो पांच महाभूत के हैं, और भगवान तो पांच महाभूत से बना ही नहीं, उनका शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनका तो चिदानंदमय देह है, तो इसलिए उनका कुछ नहीं। अब देखो सर्वतोक्ष शिरोमुखम बताया, चारों तरफ सर्वतोक्ष शिरोमुखम, चारों तरफ मुंह है चारों तरफ आंखें हैं, अब ये कैसे संभव है। ये शंकर जी की बारात में तो था को मुखहीन विपुल मुख काहू, तो पत्तल लेके आया बेचारा, कहां पत्तल डारे, अरे बोले पत्तल क्यों नहीं डारे, कहा डारे का ये मुंह नहीं है तो कहे खाएगा कैसे, आई तरफ चारों तरफ मुंह है तो कौन तरफ कौन दिशा में डाले, वो बड़ा आश्चर्य में बेचारे। अब खाना शुरू हुआ तो जितना रसोई में सामान बना था सब आ गया, सब खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो दीवारें भी खिंच के आने लगी, तो अन्नपूर्णा जी ने कहा कि अच्छा अब हम तृप्त करते हैं। तो वो जैसे ही भोजनालय में पहुंच गई वह सब तृप्त हो गए। अब भी सौभाग्यवती देवी पवित्र चौका में अगर बैठा दिया जाए तो जब तक वो बैठी रहेगी तब तक भोजन कम नहीं हो सकता, अन्नपूर्णा का मंत्र भी है, लेकिन खैर वो न हो तो सौभाग्यवती देवी जितने लोग भोजन करेंगे सब करते चले जाएंगे और उतना भोजन बना रहेगा, ये सौभाग्यवती देवी में विशेषता होती है। अन्नपूर्णा गई सब तृप्त हो गए। तो बात यह है कि बिना कर्मेंद्री के बिना ज्ञानेंद्री के, ऐसे ही बिल्कुल श्रुति में भी है अपाणी पादो जवनो गृहित्वा, यहां उसमें श्रुति में जवनो गृहित्वा बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, तो वो बात इसमें आ गई अचिंत शक्ति में, आत्मा में अचिंत शक्ति है, मैं ही तो हूं अचिंत शक्ति माने जो कभी सोचा न जाए जो कभी विचारा न जाए जो कभी मन में आया भी नहीं था वो अचिंत शक्ति कहलाती है। तो आत्मा में अचिंत शक्ति है, कहते हैं अपाणी पादो हम अचिंत शक्ति ही, बिना हाथ के बिना पैर के माने कर्मेंद्रियों के और ज्ञानेंद्रियों के बिना वो प्रकाश हैं, उन्हीं का हमारे प्रकाश से वो प्रकाशित है, और अचिंत शक्ति वाला हूं मेरे में अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्ति पश्यत चक्षुष शृणोत्य करणा, बिना आंख के देख ले बिना कान के सुन ले, ऐसा विचित्र है। अस प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सबूर अंतर्यामी, भगवान सबके भीतर विराजमान है, और ऐसी सब अलौकिक उनकी करनी है। अब आगे आया एक बड़ा बढ़िया बात कि अहम बिजानामि विविक्त रूप, ये रूप शब्द पुलिंग अहम के लिए आया, अहम विविक्त रूप, उसे बिजानामि क्रिया के साथ अगर कर्म बनाते तो रूपम बनता, लेकिन कर्म नहीं बनाया, विविध रूप के मैं हम ही हैं। ये बात थोड़ी देर में समझ में आने लायक है कि मैं जानामी, हम जानामी, और विशेष लगा दिया विजानामी, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? माने मैं चिद स्वरूप हूं, आत्मा का चिद स्वरूप। जैसे कोई कहे मैं मूर्ख हूं, तो मूर्खता को जानने वाला मूर्ख कैसे हो सकता हो? तो ज्ञान रूप होगा जो मूर्खता को जान रहा है। जैसे आपसे हमने कहा कि तुम रूस की भाषा जानते हो, तो आप कहेंगे मैं रूस की भाषा नहीं जानता हूं। तो ये जो न जानना है वो तुम्हारे ज्ञान में ही तो मालूम हुआ। तो ज्ञान अज्ञान का बाधक नहीं है, भाषक है। इस बात को अगर ठीक से समझ लो कि मैं अपनी अज्ञानता को जानता हूं। लोग कहते हैं मुझे मालूम है मैं कितने गहरे पानी में हूं, तो इसका मतलब है कि आप जानकार हैं, आप चिद स्वरूप हैं, तब ना ये बात जाने, नहीं तो जान ही नहीं सकते। कैसे जानते? बड़ा मुश्किल काम। तो पहले बात ये समझ लेनी चाहिए कि आप चिद स्वरूप हैं, और जब आप चिद स्वरूप हैं तो जितने भी दुनिया में किसी प्राणी के संकल्प आएंगे सब तुम्हारे हो जाएं, क्योंकि आप जब चिद स्वरूप हैं तो सबके संकल्प सबके विचार तुम्हारे विचार हो जाएंगे, तो राग द्वेष कट जाएगा। इसीलिए न राग होता है, इसीलिए द्वेष होता है। किसी एक के प्रति राग होना और एक के प्रति द्वेष होना, ये तभी संभव है जब आप सब में भगवान का दर्शन नहीं कर रहे। निज प्रभु मैं देखई जगत के हिसन करई विरोध। अगर सब परमात्मा रूप दिखाई देगा तो फिर तो विरोध किसी से होगा ही नहीं। आप रोज सुनते हैं हम बताएं, परमात्मा प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है। तो जब परमात्मा जिसने जगत बनाया वही एक्टर और डायरेक्टर है, तो फिर द्वेष किससे और राग किससे? एक में राग हो तो दूसरे में द्वेष होगा। ये दुर्गा सप्तशती में एक कथा आई, ये दोनों मधु और कैटब है। कथा आई, भगवान सो रहे थे तो उनके कान के मैल से दो दैत्य पैदा हो गए। अब जैसे ही वो पैदा हुए तैसे कमल नाभि कमल नाल पर बैठे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। जो मुंह जोर से फैलाया तो एक कांप गए, बोले अब तो खा जाएंगे। तो भगवान सो रहे थे तो रात्रि सूक्त से उन्हें जगाया, जागे तो देखे दो बड़े बड़े दैत्य और ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो जब वो दौड़े भगवान ने अपनी गदा संभाली और युद्ध होने लगा। तो युद्ध एक दो दिन नहीं, 5000 वर्ष बीत गए। कितने? 5000 वर्ष बीत गए, युद्ध ही होता रहा। तो उन्होंने स्मरण किया भगवती को, ये कब तक होता रहेगा? तो दोनों मोहित हो गए।